पृष्ठ संख्या 131, अध्याय 9, नई धारा से पहले पद्य और गद्य। उर्दू भाषा का विकास भारत के जिन सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित था, उसके प्रभाव में वह बड़े वेग के साथ लोकप्रिय होती जा रही थी। अब वह केवल दिल्ली और लखनऊ के केंद्रों में सीमित नहीं थी, बल्कि अपने नए नए केंद्र बनाती जा रही थी। राजनीतिक पतन के कारण जो परिवर्तन देश में हो रहे थे, उनका दार्शनिक और ऐतिहासिक अनुभव बहुत थोड़े से लोग कर सकते थे। कवि और लेखक पुरानी परंपराओं से चिपटे हुए उसी सभ्यता की आदर्शवादी कल्पनाएं प्रस्तुत कर रहे थे, जो संघर्षों के बीच छिन्न भिन्न हो रही थी। भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने, नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति के जन्म लेने के कारण जो नई लहर 19वीं शताब्दी के मध्य में उठी थी, उसका उल्लेख आगे आएगा। इस अध्याय में तूफान से पहले की उस दशा को देखना है, जो एक प्रकार के शैथिल्य और गतिरोध का पता देती है। परिपाटियों में जो शक्ति होती है, उसका इस समय से अच्छा उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि वही लोग जो स्थिति के परिवर्तित होने का अनुभव कर सकते थे, साहित्य में किसी बड़े परिवर्तन को पसंद नहीं करते थे। दिल्ली और लखनऊ के केंद्र तो थे ही, रामपुर और हैदराबाद में भी बड़े बड़े साहित्यिक केंद्र स्थापित हुए। एक दरबार से दूसरे दरबार तक कोई बड़ा अंतर नहीं होता, इसलिए साहित्य की शैलियों में जो नवीनता आई, उससे यह नहीं समझना चाहिए कि साहित्य के मूल आधारों में कोई परिवर्तन हो रहा था। दिल्ली में गालिब शौक और मोमिन के शिष्य और लखनऊ में आतिश और नाशिक की शैलियों से संबंध रखने वाले कवि कुछ तो पुरानी ही पद्धतियों का अनुसरण करते रहे और कुछ नई स्थिति को समझकर नए पथ की खोज में निकल पड़े। सन 1847 ईस्वी के विद्रोह के कारण दिल्ली और लखनऊ के राज्य समाप्त हो चुके थे। वाजिद अली शाह मटिया बुर्ज कलकत्ता में बंदी जीवन भोग रहे थे, परंतु लखनऊ के कई कवि उस स्थिति में भी उनके साथ थे। बहादुर शाह जफर रंगून में पड़े हुए थे, जो हिंदुस्तानी भाषाओं के क्षेत्र से बहुत दूर था। हैदराबाद में कवियों का बड़ा आदर सत्कार होता था और अच्छे अच्छे वेतन पर कवि वहाँ बुलाए जाते थे। पुरानी परंपराओं के कारण वहाँ उर्दू भाषा के विकास के लिए जमीन तैयार थी। रामपुर के नवाब स्वयं काव्य रचना करते थे और साहित्यकारों, कलाकारों और विद्वानों को बुलाकर अपनी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे। उनके अतिरिक्त पटना, मुर्शिदाबाद, टौंड़ा, टोंक, भोपाल, मंगरौल और अलवर इत्यादि भी कवियों को अपनी ओर खींच रहे थे। इस अवसर पर सारे कवियों, पृष्ठ संख्या 132 और साहित्यकारों के नाम देकर पूरी स्थिति को सामने लाना असंभव है। केवल प्रमुख कवियों का वर्णन करके यह बताया जा सकता है कि उर्दू साहित्य किस प्रकार देश के कोने-कोने में पहुंच रहा था और उसके विकास में सभी समुदाय और धर्म के लोग भाग लेते थे। काव्य रचना के साथ साथ सहज रूप में गद्य साहित्य का विकास भी हो रहा था, क्योंकि उर्दू साधारणतः देश की राष्ट्रभाषा समझी जाने लगी थी और अंग्रेजी राज्य ने सन 1935 ईस्वी में फारसी को निकालकर उर्दू को सरकारी भाषा घोषित कर दिया था, जिसका सबसे अधिक प्रभाव प्रेस पर पड़ा। बहुत से नए नए प्रेस खुल गए और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगीं। यद्यपि इससे बहुत पहले गद्य की रचनाएं बड़ी संख्या में तैयार हो चुकी थीं, परंतु उनको प्रकाशित करने की सुविधा न होने के कारण उनका प्रचार रुका हुआ था। कविताएं जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती थीं, परंतु गद्य के लेख हस्तलिखित रूप में एक ही जगह पड़े रह जाते थे। अधिकतर धार्मिक महत्व की रचनाओं की नकल की जाती थी। प्रेस स्थापित हो जाने के कारण गद्य के विकास को सहायता मिली। भारतवर्ष के लिए यह युग विचित्र समस्याओं का युग था। एक ओर उस नवीनता का उद्भव हो रहा था जो नई आर्थिक स्थिति से उत्पन्न हो रही थी, और दूसरी ओर वही रीत गति पर चलने वाला भारत था, जिसका ग्राम्य जीवन अभी सोया हुआ था और नगर जीवन नए और पुराने के बीच अपना पथ टटोल रहा था। इस युग का विश्लेषण इसलिए भी आसान नहीं है कि देश का सामंती युग मिट कर भी मिटा नहीं था और नवजागरण केवल अभी कुछ लोगों के बौद्धिक क्षितिज को छू सका था। इसलिए नई और पुरानी लहरें समानांतर चल रही थीं। नई लहर का विस्तृत उल्लेख आगामी अध्याय में होगा, जहाँ उस क्रम को जोड़े रखने मात्र की चेष्टा की जाएगी जो कई शताब्दियों से चला जा रहा था। दिल्ली में गालिब, मोमिन और जौ के शिष्य सिवता, महरूह, नसीम, जहीर, अनवर, सालिक और दाग इत्यादि, और लखनऊ में वाजिद अली शाह, अख्तर, मुनीर, असीर, शौक, खलक, अमानत, जलाल, अमीर मीनाई इत्यादि उसी मार्ग पर चल रहे थे जो उनके उस्तादों ने निर्मित किया था। उनकी चेतना में कोई नयापन नहीं है, लिखने का ढंग अवश्य नया है। इन कवियों ने कसीदा, मसनवी, गजल और मरसिया इत्यादि सभी काव्य रूपों को विकसित किया, परंतु इनका बड़ा भाग रीतिकाल की शिथिलता और सामाजिक कुंठा का शिकार हो गया है। इन्हीं में से कई कवि रामपुर, हैदराबाद और दूसरे राजदरबारों में पहुँचे और उनके प्रभाव में काव्य रचना को बढ़ावा मिला। संक्षिप्त में इनका उल्लेख किया जाता है क्योंकि विस्तार में जाने से यह अध्याय बहुत बढ़ जाएगा और कोई नवीन विचारधारा सामने नहीं आएगी। नवाब मोहम्मद मुस्तफ़ा खां सिवता उर्दू में मोमिन और फारसी में गालिब के शिष्य थे। इनके पिता को बहुत बड़ा इलाका अंग्रेज सरकार से मिला था, इस वजह से पृष्ठ संख्या 133 उनका परिवार बड़े सम्मान और आदर की दृष्टि से देखा जाता था। सिवता ने दिल्ली के बड़े बड़े विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की थी और वहाँ के सभी उच्च श्रेणी के विद्वानों से उनकी मैत्री थी। गदर में अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, परंतु बाद में वह निर्दोष सिद्ध हुए और छोड़ दिए गए। उनके ज्ञान एवं विद्वत्ता को गालिब के ऐसा कभी भी स्वीकार करता था। उन्होंने अपना काव्य संग्रह 21 वर्ष की आयु में तैयार कर लिया था। 33 वर्ष की अवस्था में वह हज करने गए और वहाँ से आकर काव्य रचना बहुत कम कर दी। सन 1869 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। उर्दू काव्य संग्रह के अतिरिक्त सिवता का एक फारसी काव्य संग्रह और फारसी ही में कुछ पुस्तकें भी हैं जिनमें गुलशन-ए-बेखार सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें उर्दू कवियों की जीवनी और उनकी रचनाओं की आलोचना संक्षेप में बड़े सुंदर ढंग से की गई है। इसके अध्याय में सिवता की आलोचनात्मक शक्ति का पता चलता है। इस संदर्भ में यह बात आश्चर्यजनक है कि वह एक अच्छे कवि होने पर भी कभी बहुत लोकप्रिय ना हो सके और अधिकतर लेखक उनको कवि से बड़ा आलोचक मानते रहे हैं। जहाँ तक उर्दू काव्य का संबंध है, उन्होंने अधिकतर गजलें लिखी हैं जो सच्ची भावनाओं और प्रभावशाली विचारों से ओतप्रोत हैं। वह मनोभावनाओं का कल्पनात्मक चित्र बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत करते हैं। उन्हें स्वयं इस बात पर गर्व था कि वह अतिशयोक्ति से काम नहीं लेते, तथापि उनकी कविताएं हृदयंगम हो जाती हैं। गालिब, मोमिन और हाली सभी काव्य के संबंध में उनकी सूझबूझ के प्रशंसक थे। कुछ शेर उदाहरण के लिए दिए जाते हैं। शायद इसी का नाम मुहब्बत है सेफता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। वो सेफता कि धूम थी हजरत की, युहद की, मैं क्या कहूँ कि रात मुझे किसके घर मिले। हजार दाम से निकला हूँ एक जुम्बिश में, जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। इजहारे इश्क उससे न करना था सेफता, ये क्या किया कि दोस्त को दुश्मन बना दिया। किस लिए लुत्फ की बातें हैं फिर, क्या कोई और सितम याद आया। मजरूह, जिनका नाम मीर मेहंदी था, गालिब के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। पानीपत में रहते थे, परंतु ज़्यादा समय दिल्ली में बीतता था। गालिब ने उनके नाम बहुत से पत्र लिखे हैं जिनमें दोनों की मैत्री और संबंध का पता चलता है। गदर के पृष्ठ संख्या 134। कुछ दिन बीतने के बाद वह महाराजा अलवर के यहाँ नौकर हो गए और अंतिम आयु में रामपुर चले आए। वहीं अपना काव्य संग्रह संपादित किया जो 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मजरूह ने एक लंबी आयु पाई और बहुत बूढ़े होकर 1902 ईस्वी के लगभग परलोक सिधारे। उनकी भाषा दिल्ली की शुद्ध बोल चाल की भाषा है, परंतु वह उसी सरल भाषा में अच्छे अच्छे शेर लिख लेते थे। मौलाना हाली, जो उर्दू के प्रसिद्ध आलोचकों में महत्व रखते हैं, वह मंजरू के काव्य के अत्यंत प्रशंसक थे। उदाहरणार्थ मजरूह के ये शेर देखिए, सब्र के फायदे बहुत हैं वले, दिल ही बस में नहीं तो क्या कीजिए। दिल को कोई बचा सके क्यों कर, उसे अंदाज है कयामत के। दिल ही समझे है कुछ तड़प को मेरे, वर्क में लुत्फे इज्तराब कहाँ। नसीम, जिनका नाम असगर अली खां था, दिल्ली के रहने वाले थे और मोमिन के मुख्य शिष्यों में गिने जाते थे। खाते पीते परिवार से संबंध रखते थे और बड़े बड़े कवि सम्मेलन आयोजित करते थे। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों से अनबन हो गई और वह लखनऊ चले आए। यहाँ बड़ा नाम पैदा किया और बहुत से शिष्य एकत्र कर लिए। गदर के समय लखनऊ ही में थे और अपनी जन्मभूमि से दूर दीनता का जीवन भोग रहे थे। नवल किशोर प्रश्न में अल्फ लैला की कहानियों को पद्यात्मक रूप में परिवर्तित करने के लिए नौकर हो गए थे, मगर उसे पूरा न कर सके और बाद में मुंशी तोताराम ने उसे संपन्न किया। लखनऊ में रहकर वह बड़े गर्व से दिल्ली की भाषा और काव्य शैली का प्रचार करते थे, परंतु आलोचकों का विचार है कि उन पर लखनऊ की भाषा और शैली का भी प्रभाव पड़ा था। उनकी काव्य शैली पर मोमिन का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, परंतु साधारणतः लोग उससे परिचित नहीं हैं। उनके एक शिष्य अमीरुल्लाह तस्लीम को उनसे अधिक ख्याति मिली। उनके दो शेर यह हैं, नाम मेरा सुनते ही शर्मा गई, तुमने तो खुद आपको सवा किया। जब देखिए करार नहीं एक हाल पर, मेरा सा अब तो हाल आ रोजगार का। पृष्ठ संख्या 135। दिल्ली ही के एक और कवि जहीर थे, 14 वर्ष की आयु में जौक के शिष्य हो गए थे और गदर के जमाने तक दिल्ली ही में रहे। उसके बाद जीविका की खोज में मारे मारे फिरे, 4 वर्ष रामपुर में, 4 वर्ष अलवर में, 19 वर्ष जयपुर में, 15 वर्ष टोंक में और अंतिम दिनों में हैदराबाद में रहे। जहीर साधारणतया गजलें लिखते थे, परंतु जो कवि इतने दरबारों की सेवा कर चुका हो, उसके लिए कसीदा लिखना अनिवार्य है। जहीर ने बहुत से कसीदे और अन्य प्रकार की कविताएं भी लिखीं, परंतु उन्होंने गजलों ही के कारण ख्याति प्राप्त की। उन्होंने अपने 4 संग्रह तैयार किए थे, जिनमें से 3 प्रकाशित हो चुके हैं। जहीर थे तो यौग के शिष्य, परंतु उनकी कविता में मोमिन का रंग झलकता है। मोमिन की भांति ही वह भी भावात्मक अनुभूतियों तथा प्रयोगों को बड़ी सुंदरता और कोमलता से प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषा फारसी निष्ठ होते हुए भी सहज है। यही ने गद्य में गदर का आँखों देखा हाल दास्ताने गदर के नाम से लिखा, जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत है। जहीर के छोटे भाई अनवर भी एक अच्छे कवि थे। पहले जौक को अपनी कविताएं दिखाते थे, फिर गालिब के शिष्य हो गए। दिल्ली के बड़े अच्छे और लोकप्रिय कवि माने जाते थे। गदर के बाद वह भी जयपुर चले गए, परंतु युवा अवस्था में ही उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि उनके भी 2 काव्य संग्रह थे जो नष्ट हो गए, मगर खुमखाना ए जावेद के प्रसिद्ध लेखक लाला श्री राम ने उनकी कविताओं को खोजकर एकत्र किया और एक छोटा सा संग्रह प्रकाशित करा दिया। उनकी गजलों पर भी जहीर की भांति मोमिन और गालिब का प्रभाव अधिक मालूम होता है। वैसे तो दिल्ली कवियों से भरी हुई थी और सहस्त्रों कवि साहित्य सृजना में लगे हुए थे, परंतु उसके अंतिम युग में जो ख्याति रिजाक को मिली, वह किसी और को नहीं। रिजाक का नाम नवाब मिर्जा खां था। वह फिरोजपुर के प्रसिद्ध अमीर नवाब शमसुद्दीन के पुत्र थे। अभी केवल 6 वर्ष के थे कि उनके पिता का देहांत हो गया और विधवा माता ने दिल्ली के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर के पुत्र मिर्जा फखरू से विवाह कर लिया। इस प्रकार रजाक का गदर तक का जीवन राजभवन में बीता। वहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहीं काव्य रचना प्रारंभ की। दिल्ली के किले में उस समय यौग का बोलबाला था। बादशाह, शहजादे और शहजादियाँ सब उन्हीं के शिष्य थे, इसलिए दाग भी अपनी कविताएं उन्हीं को दिखाने लगे। जब गदर में मुगल परिवार का विनाश हो गया, तो दाग अपने परिवार को लेकर रामपुर चले आए। वहाँ उन्हें एक नौकरी दे दी गई और 24 वर्ष तक बड़ी शान से वहीं अपना जीवन बिताया। रामपुर में उनका ऐसा आदर सत्कार हुआ और भोग विलास के ऐसे अवसर मिले कि वह उनको आरामपुर कहते थे। रामपुर के नवाब कल्बे अली खां, जो दाग को बहुत प्रिय रखते थे, जब सन 1886 ईस्वी में चल बसे तो दाग भी वहाँ से निकल पड़े। कुछ दिन लखनऊ, पटना और कलकत्ता में रहे। पृष्ठ संख्या 136। कुछ समय दिल्ली में बिताया, हर जगह उनका सम्मान किया गया, परंतु वह सन 1888 ईस्वी में हैदराबाद चले गए। इसी बीच में वह जहाँ कहीं भी गए, वहाँ उनके बहुत से शिष्य हो गए। आरंभ में हैदराबाद में उनकी कुछ अधिक पूछताछ न हुई और वह दिल्ली लौट आए, परंतु 1891 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम महबूब अली खान ने उन्हें बुला भेजा और 1000 रुपये मासिक वेतन नियुक्त किया गया। 1905 ईस्वी तक वह हैदराबाद ही में रहे और वहीं उनकी मृत्यु हुई। हैदराबाद के दरबार से उनको कई उपाधियां भी मिली। दाग को जो सम्मान हैदराबाद में प्राप्त हुआ, वह विरला ही किसी कवि को मिला होगा।